दानियल की पुस्तक संख्या 188। राफिया से पैनियम तक प्राचीन युद्धों के भविष्यवाणी संबंधी महत्व का अनावरण।
राफिया का युद्ध और पैनियम का युद्ध दो अलग अलग ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो भिन्न समय और संदर्भों में हुई, परंतु दोनों का प्राचीन यहूदिया और उसके आसपास के क्षेत्रों के इतिहास में महत्व है। राफिया का युद्ध 272 ईसा पूर्व में हुआ। पैनियम का युद्ध 200 ईसा पूर्व में सेल्यूकिड राज्य उत्तरी राजा और टॉलेमिक राज्य दक्षिणी राजा के बीच हुआ। इन दोनों युद्धों का उल्लेख दानियल के 11वें अध्याय की 11वीं से 15वीं आयतों में किया गया है। ये दोनों युद्ध 770 ईसा पूर्व के मकाबी विद्रोह से पहले हुए थे। पानियम का युद्ध अपना नाम निकटवर्ती भौगोलिक स्थल पानियम पर्वत से प्राप्त करता है जहां ये संघर्ष हुआ था। पानियम नाम यूनानी देवता पान से व्युत्पन्न है जिसके लिए वहां एक मंदिर समर्पित था। पान की उपासना के साथ उसके संबंध के कारण ये स्थल पानियम के नाम से जाना जाता था। मंदिर समूह को प्रायः पान का पवित्र स्थान कहा जाता था जिससे देवता पान को समर्पित को धार्मिक भक्ति और उपासना के स्थान के रूप में उसकी भूमिका पर बल दिया जाता था। निम्फायूम शब्द प्राचीन यूनानी और रोमी धर्म में जल अप्सराओं को समर्पित किसी स्मारक या देवालय को सूचित करता है। पानियम के मंदिर समूह में एक कंदरा और प्राकृतिक झरना सम्मिलित थे जिनके विषय में ये माना जाता था कि उनमें अप्सराएं निवास करती हैं, अतः उसे कभी कभी पानियम का निम्फायूम भी कहा जाता था। हेरोद महान के पुरत हेरोद फिलिप द्वारा शहर के पुनर्निर्माण और विस्तार के बाद इसे रोमी सम्राट सीजर ऑगस्टस और स्वयं हेरोद फिलिप के सम्मान में कैसरिया फिलिप्पी कहा जाने लगा। मंदिर परिसर इस शहर के भीतर एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र था। सम्राट ऑगस्टस के शासनकाल के दौरान मंदिर को ऑगस्टस के सम्मान में फिर से समर्पित किया गया या उसका नाम बदल दिया गया, जो शाही पंथ और रोमन धार्मिक प्रथाओं का स्थानीय धार्मिक परिदृश्य में समीकरण दर्शाता था। प्राचीन नगर कैसरिया फिलिप्पी के निकट का क्षेत्र जहां पान का मंदिर स्थित था को कभी कभी नरक के द्वार या हादेस के द्वार कहा जाता था। दानियल अध्याय 11 के पद 16 से 19 में विजय के उन तीन भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया गया है जिन्हें बाइबल की भविष्यद्वाणी के चौथे राज्य तथा इस अध्याय के उत्तर के राजा के रूप में स्थापित होने के लिए मूर्ति पूजक रोम को पराजित करना था। पद 16 में रोमी सेनापति पोम्पेयुस की पहचान इस रूप में की गई है कि उसने 65 ईसापूर्व में सीरिया पर और फिर 17 ईसापूर्व में यरूशलेम पर विजय प्राप्त की। पद 17 से 19 जूलियस सीजर द्वारा मिस्र की विजय की पहचान कराते हैं जो उन तीन बाधाओं में तीसरी थी। 31 ईसापूर्व में आक्टीम का युद्ध उन 360 वर्षों का आरंभ चिह्नित करता है जिनमें दानियल अध्याय 11 के पद 24 की पूर्ति में मूर्ति पूजक रोम सर्वोच्च प्रभुत्व के साथ शासन करता रहा। 20वें पद में ऑगस्टस सीजर के शासनकाल को चिह्नित किया गया है और उसी इतिहास में यीशु का जन्म हुआ। फिर 21वें और 22वें पद में दुष्ट टाइबेरियस सीजर के शासनकाल की पहचान की गई है। इस प्रकार मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने को चिह्नित किया गया है। 23वें पद में वो संधि चिह्नित है जो मकाबी यहूदियों ने मूर्ति पूजक रोम के साथ की थी। और इस प्रकार पद 11 में आरंभ हुआ इतिहास का प्रवाह रुक जाता है और ऐतिहासिक वर्णन 751 ईसापूर्व से 758 ईसापूर्व के काल में वापस चला जाता है। 23वीं आयत मित्र काबियों की वंश रेखा का प्रतिनिधित्व करती है और यद्यपि वो उनकी भविष्यवाणी संबंधी वंशक्रम के सभी विवरण नहीं देती, इतिहास का अभिलेख देता है। 87 ईसा पूर्व में राफिया का युद्ध हुआ और उसके बाद मिस्र में एक बाल राजा के होने से देश असुरक्षित रह गया। 200 ईसा पूर्व में जब सेल्यूकिड और यूनानी राजाओं ने उस बाल राजा से निपटने की योजनाएं बनाई, तब रोम ने इतिहास में हस्तक्षेप किया और मिस्री बाल राजा का रक्षक बन गया। उसी वर्ष पानियम का युद्ध हुआ। फिर 627 ईसा पूर्व में मकाबियों का छापामार युद्ध आरंभ हुआ। मक्काबी विद्रोह 175 ईसा पूर्व में मुदीन में आरंभ हुआ और इसमें मक्काबियों ने न केवल सेल्यूसिड साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष किया बल्कि उन यहूदियों के विरुद्ध भी अभियान चलाया जिनके बारे में उन्होंने ये ठहराया था कि वे सेल्यूसिडों के साथ मिलीभगत में हैं। ये विद्रोह धार्मिक प्रेरणा से संचालित था और इसे आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के शत्रुओं के विरुद्ध अंजाम दिया गया। 160 ईसा पूर्व में मक्काबियों ने मंदिर का पुनः समर्पण किया और इस घटना की स्मृति यहूदियों के हनुक्का उत्सव द्वारा मनाई जाती है। उसी वर्ष कुख्यात अंतियोकुस एपीआई फेनेस की मृत्यु हुई। फिर 160 ईसा पूर्व से 158 ईसा पूर्व तक पद 23 की संधि रोम के साथ की गई। मक्काबियों, उनके विद्रोहों और रोम के साथ उनके गठबंधन का एकमात्र प्रत्यक्ष संदर्भ 23वें शताब्दी में मिलता है, परंतु जिस वंश को हसमोनियन राजवंश कहा जाता है उसका इतिहास 1747 ईसा पूर्व मोडेन में शुरू हुआ और क्रूस के समय तक जारी रहा। हसमोनियन राजवंश के अंतिम प्रतिनिधि मसीह के समय के फरीसी थे, अतः मक्काबियों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए धर्मत्यागी यहूदी धर्म के इतिहास की एक भविष्यवाणी की रेखा है जो 1747 ईसा पूर्व मोडेन के विद्रोह से शुरू होती है और जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तब पद 21 और सिमेन तक समाप्त होती है। उनका इतिहास पद 16 में एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचा जब रोम ने पहली बार पोम्पेया के द्वारा यरूशलेम पर विजय प्राप्त की। उस समय यरूशलेम पर ये विनाश लाने का उसका मुख्य कारण हसमोनी वंश के दो गुटों के बीच का विवाद था। उस समय से 63 ईसा पूर्व यहूदा रोमी शासन के अधीन रहा। मक्काबियों का हसमोनी वंश भविष्यवाणी के अनुसार 66 शमदक ईसा पूर्व मोडीन के युद्ध से आरंभ होता है और 63 ईसा पूर्व में रोम की अधीनता में आ जाता है। उस इतिहास की शुरुआत के थोड़े ही समय बाद मक्काबियों ने 161 ईसा पूर्व से 158 ईसा पूर्व तक रोम के साथ एक गठबंधन किया। वे 63 ईसा पूर्व से रोम के अधीन रहे क्रूस के समय तक और अंततः 70 ईस्वी में यरूशलेम के अंतिम विनाश तक। मक्काबियों की भविष्य सूचक रेखा धर्मत्यागी यहूदी धर्मसेरा रेखा है और इसलिए वो धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद की रेखा का प्रतीक है। पानियम के युद्ध से लेकर पद 16 के रविवार के कानून तक 200 ईसा पूर्व 227 ईसा पूर्व 227 ईसा पूर्व की भविष्य सूचक घटनाएं और 161 ईसा पूर्व से 195 ईसा पूर्व तक की संधि धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद के इतिहास में दोहराई जाएंगी। ये मार्ग चिह्न रविवार के कानून से पूर्व 7 में से जो 8वां राष्ट्रपति है उसके इतिहास में घटित होंगे। 200 ईसा पूर्व 227 ईसा पूर्व के संबंध में गणतांत्रिक सींग की बाहरी रेखा का प्रतिनिधित्व करता है और 127 ईसा पूर्व धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंट सींग की आंतरिक रेखा का प्रतिनिधित्व करता है। ये मार्ग चिह्न हेचमोनियन राजवंश की ऐतिहासिक सधारा के भीतर मूलतः छिपे हुए हैं, फिर भी दानियल अध्याय 11 के 40वें मार्ग के छिपे हुए इतिहास का हिस्सा बनते हैं। ये एक ऐसी कड़ी है जो अंतिम दिनों से संबंधित दानियल की भविष्यवाणी के उस भाग का अंग है। ये तथ्य कि यहूदी धर्म मक्काबियों के विद्रोह की स्मृति में हनुक्का मनाता है मक्काबियों को धर्मी सिद्ध नहीं करता। विद्रोह के कारण शेखीना उस मंदिर में कभी वापस नहीं लौटी जो 70 वर्षों की बंधुआई के बाद पुनर्निर्मित किया गया था। अंतिम भविष्यवाणी संबंधी संदेश मलाकी के द्वारा मक्काबियों से लगभग 2 शताब्दी पूर्व आया था। मक्काबियों का इतिहास ये प्रकट करता है कि उन्होंने अपने राजनीतिक नेताओं को महायाजक के रूप में भी कार्य करने दिया, वही पाप जिसका प्रयत्न मिस्री टॉलेमी ने किया था और जिसका प्रयत्न राजा उज्जिया ने भी किया था। परंपरा ये बताती है कि परमेश्वर ने टॉलेमी को उस धर्मद्रोह ही कृत्य से रोकने के लिए हस्तक्षेप किया और परमेश्वर का वचन प्रत्यक्ष रूप से ये दर्शाता है कि जब राजा उज्जिया ने याजक और राजा का कार्य करने का प्रयास किया तब परमेश्वर ने वास्तव में हस्तक्षेप किया। उनके वंश का अंतिम फल फरीसी थे। आधुनिक यहूदी धर्म के यहूदी उन्हें ऐतिहासिक श्रद्धा की दृष्टि से देखते हों, तो भी ये निष्कर्ष निकालने का कोई कारण नहीं है कि मक्काबी धार्मिकता के प्रतीक थे। प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन का आरंभ लूथर के समय में हुआ और वो एक प्रगतिशील विकास था। वो कोई नई परंपरा नहीं थी, क्योंकि यीशु और उसके चेले प्रोटेस्टेंट थे। वो इतिहास के अंधकार के प्रति एक जागृति थी, जिसमें लूथर और अन्य सुधारक जागृत किए गए। उस प्रगतिशील सुधार का चरम बिंदु मिलेराइट आंदोलन था। परमेश्वर को केवल प्रारंभिक सुधारकों को बाबुल के पापों के प्रति जागृत करना ही आवश्यक नहीं, वरन उसका अभिप्राय उन्हें अपनी व्यवस्था की पूर्ण समझ और स्वर्गीय पवित्र स्थान में अपने कार्य की पूर्ण समझ में लाना था। 19 अप्रैल 1844 को प्रोटेस्टेंटों ने सुधार के बढ़ते हुए प्रकाश को अस्वीकार कर दिया और वे धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद बन गए। तत्पश्चात विश्वासी मिलराइटों को चौगा दिया गया और उन्हें अति पवित्र स्थान में इस कार्य को पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया, ताकि वे परिपक्व प्रोटेस्टेंट मसीही बन सकें। 1863 में जिन्हें चोगा दिया गया था, उन्होंने अवज्ञा के कारण प्रोटेस्टेंटवाद का चोगा अलग रख दिया और लाओदिकिया का चोगा धारण कर लिया। 1,44,000 की मुहरबंदी की अंतिम अवधि में, जो 11 सितंबर 2001 के 22 वर्ष बाद 2023 में आरंभ हुई, यहूदा के गोत्र का सिंह दानुएल अध्याय 11 के पद 40 के छिपे हुए इतिहास को पूरा करने वाले सत्यों की मुहर खोल रहा है, जो 1989 में सोवियत संघ के पतन से लेकर शीघ्र आने वाले रविवार के कानून तक का इतिहास है। ये करते हुए उसने धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद के प्रतीक के रूप में धर्मत्यागी यहूदी धर्म के इतिहास की मुहर खोल दी है। निस्तिर देगेव परमेश्वर के धर्मत्यागी लोगों की दोनों धाराएं, चाहे वे शाब्दिक यहूदा की हों या आध्यात्मिक यहूदा की, दोनों महिमामय देश यरूशलेम पर विजय के साथ समाप्त होती है, पहली 300 ईस्वी में और दूसरी शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के समय। दोनों धाराएं ऐसे युद्ध का प्रतिनिधित्व करती हैं जो भ्रमित धार्मिक मान्यताओं से प्रेरित है। दोनों यूनान के धार्मिक दर्शन के विरुद्ध एक युद्ध को दर्शाती है और दोनों का अंत धर्मत्यागियों के रोम के अधीन हो जाने पर होता है। मैं पद 40 के तीन युद्धों को 1989 में सोवियत संघ के पतन, यूक्रेन युद्ध और रविवार के कानून के समय पैनियम का प्रतिनिधि ठहराता हूं, ताकि उन तीन युद्धों और तीन विश्व युद्धों के बीच भेद स्पष्ट हो सके।
ईश्वर के वचन ने आसन्न खतरे की चेतावनी दे दी है। यदि इसे अनसुना कर दिया गया तो प्रोटेस्टेंट जगत को रोम के वास्तविक उद्देश्यों का पता तभी चलेगा जब फंदे से बच निकलना बहुत देर हो चुका होगा। वो चुपचाप शक्ति हासिल कर रही है। उसके सिद्धांत विधायी सभागृहों में, चर्चों में और मनुष्यों के हृदयों में अपना प्रभाव डाल रहे हैं। वो अपने ऊंचे और विशाल भवन खड़े करती जा रही है, जिनके गुप्त कक्षों में उसके पूर्व उत्पीड़नों की पुनरावृत्ति होगी। गुप्त रूप से और बिना संदेह उत्पन्न किए वो अपनी शक्तियों को मजबूत कर रही है, ताकि जब उसके प्रहार का समय आए वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। उसे केवल अनुकूल स्थिति चाहिए और वो उसे पहले से ही मिल रही है। हम शीघ्र ही देखेंगे और महसूस करेंगे कि रोमन तत्व का उद्देश्य क्या है। जो कोई भी ईश्वर के वचन पर विश्वास करेगा और उसका पालन करेगा, उसी कारण उसे निंदा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 8:5:1।
10वीं आयत से, जो 1995 में सोवियत संघ के पतन की पहचान करती है, 15वीं आयत में पानियम के युद्ध तक पोप की सत्ता अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए, जब उसके वार करने का समय आएगा, अपने बलों को मजबूत करती रही है। ये आयतें उन भविष्य सूचक परिस्थितियों की पहचान करती हैं जो पोप की सत्ता द्वारा तैयार किया गया फंदा है, जिससे बचना असंभव होगा। अंतिम भिड़ंत में, जिसका प्रतिनिधित्व पानियम के युद्ध द्वारा होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पशु की प्रतिमा का निर्माण होगा। उस प्रतिमा का निर्माण अंतिम दिनों में परमेश्वर के लोगों के लिए अंतिम परीक्षा है।
प्रभु ने मुझे स्पष्ट रूप से दिखाया है कि अनुग्रह के काल के समाप्त होने से पहले पशु की प्रतिमा गठित की जाएगी, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रजा के लिए वो महान परीक्षा होगी जिसके द्वारा उनकी अनंत नियति का निर्णय किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 13 में ये विषय स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। प्रकाशित वाक्य 13:11-12:17 उद्धृत। यह वो परीक्षा है जिससे परमेश्वर की प्रजा को मुहर लगाए जाने से पहले होकर गुजरना होगा। वे सब जिन्होंने उसकी व्यवस्था का पालन करके और एक जाली सप्त को स्वीकार करने से इनकार करके परमेश्वर के प्रति अपनी निष्ठा सिद्ध की है, प्रभु परमेश्वर यहोवा के ध्वज के अधीन पंक्तिबद्ध होंगे और जीवते परमेश्वर की मुहर प्राप्त करेंगे, जो स्वर्गीय उद्गम के सत्य को त्याग देते हैं और रविवार के सप्त को स्वीकार करते हैं, वे पशु की छाप प्राप्त करेंगे। मैन्युस्क्रिप्ट रिलीजेस वॉल्यूम 15:20।
पशु की प्रतिमा का निर्माण उस अवधि द्वारा दर्शाया जाता है जब रोम के साथ गठबंधन किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रोटेस्टेंट सिंह 1844 में रोम की बेटियां बन गया और उनके इतिहास का आरंभ उनके इतिहास के अंत में तब दोहराया जाता है जब वे एक बार फिर अपनी माता का अनुकरण करने का निश्चय करते हैं।
मैंने देखा कि दो सींगों वाले पशु का मुंह अजगर जैसा था और उसकी शक्ति उसके सिर में थी, और ये भी कि फरमान उसके मुंह से निकलेगा। फिर मैंने वेश्याओं की माता को देखा कि वो माता बेटियों से अलग और भिन्न थी, वो स्वयं बेटियां नहीं थी। उसका दिन आकर जा चुका है और उसकी बेटियां अर्थात प्रोटेस्टेंट संप्रदाय मंच पर आने वाली अगली थी और उसी विचारधारा को अमल में लाने वाली थी जो माता की थी जब वो संतों को सताती थी। मैंने देखा कि जैसे जैसे माता की शक्ति क्षीण होती गई, बेटियां बढ़ती गई और शीघ्र ही वे उसी शक्ति का प्रयोग करेंगी जो कभी माता ने किया था। मैंने देखा कि नाम मात्र की कलीसिया और नाम मात्र के एडवेंटिस्ट यहूदा की तरह हमारा विश्वासघात करेंगे और सत्य का विरोध करने हेतु कैथोलिकों का प्रभाव पाने के लिए हमें कैथोलिकों के हवाले कर देंगे। तब संत एक अल्प परिचित लोग होंगे, कैथोलिकों के लिए बहुत कम जात, परंतु वे कलीसियाएं और नाम मात्र के एडवेंटिस्ट जो हमारे विश्वास और रीति रिवाजों को जानते हैं, क्योंकि वे हमें सप्त के कारण घृणा करते थे क्योंकि वे उसका खंडन नहीं कर सकते थे, संतों का विश्वासघात करेंगे और उन्हें कैथोलिकों के पास उन लोगों के रूप में शिकायत करेंगे जो लोगों की संस्थाओं की अवहेलना करते हैं, अर्थात वे सप्त का पालन करते हैं और रविवार की उपेक्षा करते हैं। तब कैथोलिक प्रभिमम से कहेंगे कि वे आगे बढ़ें और ये फरमान जारी करें कि जो कोई सातवें दिन के स्थान पर सप्ताह के पहले दिन का पालन नहीं करेगा उसे मार डाला जाए, और कैथोलिक जिनकी संख्या अधिक है प्रोटेस्टेंटों का साथ देंगे। कैथोलिक अपनी शक्ति पशु की प्रतिमा को देंगे और प्रोटेस्टेंट संतों का नाश करने के लिए ठीक वैसा ही करेंगे जैसा उनकी माता ने उनसे पहले किया, परंतु उनके फरमान के फल देने से पहले ही संत परमेश्वर की वाणी द्वारा छुड़ा लिए जाएंगे। स्पॉल्डिंग और मैगन 1:2।
उस खंड में नाम मात्र अर्थात केवल नाम के दो समूह हैं जो परमेश्वर के विश्वास योग्य जनों को कैथोलिकों के हवाले कर देते हैं। एलेन व्हाइट की नाम मात्र कलीसियाओं और नाम मात्र एडवेंटिस्टों के बारे में समझ अंतिम दिनों में उनके वास्तविक अर्थ से भिन्न है, क्योंकि उनके अनुसार नाम मात्र एडवेंटिस्ट वो मसीही होता था जो मसीह के पुनरागमन पर विश्वास करने का दावा करता था, परंतु भविष्यद्वक्ता जिन दिनों में वे जीते थे उनकी अपेक्षा अंतिम दिनों के लिए अधिक बोलते हैं, और अंतिम दिनों में नाम मात्र एडवेंटिस्ट लाओदिकियन सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया का प्रतिनिधित्व करता है, और नाम मात्र कलीसियाएं उन लोगों की वंशज हैं जो 1884 में रोम की बेटियां बन गए। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट उन अल्पज्ञात लोगों से घृणा करेंगे जो परमेश्वर के सच्चे प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वे सप्त के सत्य का खंडन नहीं कर सकते जो भूमि के विश्राम करते हुए सप्त का प्रतिनिधित्व करता है। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया सातवें दिन को आराधना के दिन के रूप में बनाए रखने का दावा करती है, परंतु अंतिम दिनों में वो सप्त जिसका वे खंडन कर सकते लेव्य व्यवस्था 26 के सात काल है जो वो प्रथम आधारभूत सत्य था जिसे उन्होंने 1863 में अस्वीकार कर दिया था। जिस अनुच्छेद पर हम अभी विचार कर रहे हैं वो उन भविष्य सूचक गतिशीलताओं की पहचान करता है जिस इतिहास से संबंधित हैं जो शीघ्र आने वाले रविवार के कानून से शुरू होता है, किंतु रविवार के कानून के बाद आने वाला अंतिम परिसेक्शन का इतिहास सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर संपन्न होता है। रविवार के कानून के समय संयुक्त राज्य अमेरिका पूरे संसार को पशु की मूर्ति स्थापित करने के लिए बाध्य करेगा, परंतु उस कार्य को पूरा करने से पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में ही पशु की मूर्ति स्थापित कर चुका होगा।
जब अमेरिका, जो धार्मिक स्वतंत्रता की भूमि है, अंतरात्मा पर बल प्रयोग करने और मनुष्यों को झूठे सप्त का आदर करने के लिए बाध्य करने में पोप तंत्र के साथ एक हो जाएगा, तब पृथ्वी के प्रत्येक देश के लोग उसके उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किए जाएंगे। टेस्टिमोनीज वॉल्यूम 6:18। विदेशी राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका के उदाहरण का अनुसरण करेंगे। यद्यपि वो अग्रणी हैं, तो भी यही संकट संसार के सब भागों में रहने वाले हमारे लोगों पर आएगा। टेस्टिमोनीज वॉल्यूम 6:395।
परमेश्वर की प्रजा के लिए महान परीक्षा रविवार के कानून से पहले आती है, क्योंकि रविवार के कानून पर सेवंथ डे एडवेंटिस्टों के लिए अनुग्रह अवधि समाप्त हो जाती है। इस परीक्षा को पशु की मूर्ति के गठन के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और पशु की मूर्ति कलीसिया और राज्य के उस संयोग को दर्शाती है जिसमें कलीसिया उस संबंध पर नियंत्रण रखती है, जैसे 1884 में प्रोटेस्टेंट रोम की पुत्री बन गए थे और पुत्री अपनी माता की प्रतिमा होती है, वैसे ही धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंट अंतिम दिनों में एक समानांतर कार्य सिद्ध करेंगे, क्योंकि यीशु सदा किसी वस्तु के अंत को उसकी शुरुआत के द्वारा स्पष्ट करते हैं। दानियेल अध्याय 11 के 23वें पद की संधि द्वारा दर्शाया गया इतिहास ये दिखाता है कि वैभवशाली देश के नामधारी धर्मत्यागी लोग रोम के साथ गठबंधन करने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे। सौल एसल ईशपू से सौलौंट अन्यन्न ईशी पर व काल में, जो पशु की छवि के निर्माण का प्रतिनिधित्व करता है जो रविवार के कानून पर आकर चरम पर पहुंचता है। हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
परंतु पशु की मूरत क्या है और वो किस प्रकार बनाई जाएगी? ये मूरत दो सिंह वाले पशु द्वारा बनाई जाती है, और वो उस पशु की मूरत है। उसे पशु की मूरत भी कहा गया है। अतः ये जानने के लिए कि ये मूरत कैसी है और वो किस प्रकार बनाई जाएगी, हमें स्वयं उस पशु अर्थात पोप सत्ता की विशेषताओं का अध्ययन करना होगा। जब प्रारंभिक कलीसिया सुसमाचार की सरलता से हटकर भ्रष्ट हो गई और उसने अन्य जातीय रीति रिवाजों और प्रथाओं को ग्रहण कर लिया, तब उसने परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ्य को खो दिया, और लोगों के विवेक पर नियंत्रण रखने के लिए उसने लौकिक सत्ता का सहारा लिया। इसका परिणाम पोप तंत्र के रूप में हुआ, अर्थात ऐसी कलीसिया जो राज्य की शक्ति को नियंत्रित करती थी और उसे अपने ही उद्देश्यों की उन्नति के लिए, विशेषकर विधर्म के दंड के लिए प्रयोग में लाती थी। संयुक्त राज्य के लिए पशु की एक मूरत बनाने हेतु ये आवश्यक है कि धार्मिक शक्ति नागरिक सरकार पर ऐसा नियंत्रण स्थापित करे कि राज्य का अधिकार भी कलीसिया द्वारा अपने ही उद्देश्यों की सिद्धि के लिए प्रयोग में लाया जाए। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 434।